لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقط قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعرج، صدق الله العلي العظيم. مؤمنين، آج ہم سورة معرج کی شروعات کر رہے ہیں. جو آیتیں پڑھی ہیں، یہ پہلی تین آیتیں ہیں انشاءاللہ. سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، کافروں کے لیے جس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی جانب سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. تو سوال کرا ایک سائل نے کہ عذاب واقعہ، مطلب کہ وہ عذاب جو کہ واقع ہو کے رہے گا. اور پھر کیا کہا اللہ نے، لل کافرین لیس لہ دافع، اور کافروں کے لیے جو کہ اس کو دور نہ کر پائیں گے، اس کو ہٹا نہ پائیں گے. تو ایک تو کیا ہے، عذاب واقع ہوگا اور لیس لہ دافع، یعنی کہ اس کو پھر دور نہ کیا جائے گا، یعنی کہ یہ عذاب مکمل ہے، یہ آئے گا ضرور اور اس کو کوئی اس کا دفاع کوئی نہیں کر پائے گا. من اللہ ذی المعارج، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، تو عروج کے زینے کیا ہوتے ہیں؟ معارج، ذی المعارج مطلب عروج کے زینے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے زینے ہوتے ہیں، لیڈرس ہیں اللہ کی طرف جانے کے، یعنی کہ آپ اللہ کے طرف پاس ایک دم سے نہیں جا سکتے. یہ خصوصاً یہ آیت اس لیے آئی کہ ملائکہ اور روح یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے مقام ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے ہو. جیسے کہ جب سرکار بھی جب گئے تھے معراج پہ، تو جبریل امین بھی ایک جگہ جا کے رک گئے تھے. پھر آگے قعبہ قوسین و ادنا، مطلب کہ دو کمانے، اس سے بھی کم کی دوری پہ سرکار تھے، لیکن فرشتوں کے لیے زینے لگے ہوئے تھے. تو یہ جو کہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے ہیں ملائکہ کو. مومنی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمارے جیسا ایمان، جیسا ہمارا عمل، جیسی میری معرفت، ویسا اللہ کا قرب، اور وہ ویسے ہی ہمارے لیے بھی زینے ہیں. ایسے ہی زینے ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہمارا ایمان، عمل، صدق کتنا ہے، معرفت اللہ کی کتنی ہے، اس حساب سے ہمارے بھی زینے ہیں. لیکن سرکار کے بارے میں میں نے بھی جسے آپ سے عرض کیا کہ سرکار کے لیے یہ تھا کہ دو کمان سے بھی کم. تو یہ چیزیں ملائکہ کے بھی لیے ہیں اور یہ چیزیں مومنین کے لیے بھی ہیں. تو اس آیت کے بارے میں کہ کون سائل تھا، اس نے یہ سوال کب کیا، تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے کہا کہ جب اٹھارہ ذی الحج کو سرکار نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جب یہ بات دور و دور پھیل گئی تو ایک شخص آیا سرکار کے پاس، اس کا نام تھا نعمان بن حارث. نعمان بن حارث آیا سرکار کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک تو ہم نے کہا اللہ ایک، آپ نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو ہم نے وہ کرا، آپ نے کہا کہ جہاد کرو ہم نے کرا، آپ نے کہا کہ حج کرو وہ ہم نے کرا، لیکن یہ جو آپ نے حکم دیا کہ ان کو، مطلب کہ مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کو میرے بعد بناؤ وسی، تو یہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ تو سرکار نے کہا کہ جس خدا نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ये उसकी तरफ से। तो वो मालून पलटा, वो पलट के कहा कि अल्लाह अगर ये तेरी तरफ से है तो तू तुझ पे, अगर ये तेरी तरफ से है तो तू मेरे ऊपर आसमान से पत्थर नाजिल कर। तो उस वक़्त आसमान से पत्थर नाजिल हुआ और वो मालून वहीं मर गया। तो ये इस आयत के बारे में ये जो है एक्सप्लेनेशन, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ से। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा था, क्या कहा था, तअरुजुल मलाइकत रूहु इलैही फी यौमि मिन अल्लाह ज़िल अच्छा, इसके बाद की जो चौथी आयत है ये इस तरीके से, तअरुजुल मलाइकत व रूहु इलैही फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, फरिश्ते और रूह उस पर चढ़कर उसकी तरफ जाते हैं ऐसे दिन में जो 50,000 साल के बराबर है। तअरुजुल मलाइकत व रूह इलैही फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी कि ये अब जो आयत आई है क़यामत के दिन की आयत आई है। क्या ये क़यामत के दिन की आयत के रूह और मलाइका, रूह अलग मखलूक है इसलिए अल्लाह ने उसका अलग से जिक्र करा है, रूह अल्लाह का अमर है और रूह और मलाइका उसकी तरफ जाएंगे उस दिन जिसकी मकदार 50,000 साल की है। तो मीज़ान ने एक्सप्लेन करा है कि इस दुनिया के अंदर मलाइका जो हैं ये हमारे काम करते हैं, मतलब के दुनिया के काम करते हैं ना, हवा चलाना और हर चीज़ का रूह कब्ज करना, हर तरह तरह के बारिश होना, इन सब में ये काम में मशगूल होते हैं। जब क़यामत आ जाएंगी तो ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे मलाइका और रूह, ये अल्लाह की तरफ जाएंगे क्योंकि उनका काम इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो उनका क्या काम है यहाँ, तो वो अल्लाह की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया तअरुजुल मलाइका और रूह इलैही फी यौमिन काना मक़दारु 50 अल्फ सना फ़ज़बिर सबरन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। अब क्या कि ये जो कुफार जो पुकार पुकार कहते थे हमें जल्दी अजाब दो, तो सरकार को अल्लाह ने फरमाया कि ये जो कह रहे हैं कि जल्दी अजाब दो इस तरीके से, तो अल्लाह सुब्हान ने फरमाया फ़ज़बिर सबरन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, आप सब्र जमील से काम लीजिए, ये लोग उसे दूर समझते हैं और हम उसे करीब देखते हैं क़यामत के दिन को, कि आप सब्र करें, ये क़यामत का दिन आने वाला है जिसकी मकदार 50,000 साल होगी और ये लोग उसे दूर समझते हैं और हम उसे करीब समझते हैं कि बहुत ही करीब है। जब ये आयत आई थी तो एक शख्स ने जो सरकार के पास नज़दीक बैठा था उसने कहा कि या रसूल अल्लाह ये इतना लंबा वक्फा होगा 50,000 साल का क़यामत दिन, तो पहले इससे पहले मैं सरकार का जवाब दूँ उससे पहले मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपना हिसाब पहले खुद ले लो इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले, जिसकी की मुद्दत 50,000 साल है, 50,000 साल है और उस पे 50 जगह इंसान को रुकना पड़ेगा अपना हिसाब देने, और एक एक जगह रुकने का वक्त है 1,000 साल। देखें आप कितनी मुश्किल का जगह है क़यामत का दिन, 1,000 साल, 50 जगहें जब रुकना पड़ेगा और एक एक जगह 1,000 साल का हिसाब है। तो अपनी बात को मैं पूरी करता हूँ कि जब उस शख्स ने सरकार से कहा कि 50,000 साल का वक्फा कितना लंबा है या नबी, तो सरकार ने कहा कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि जो कोई मोमिन होगा तो उसके लिए ये मुद्दत अल्लाह इतनी कर देगा कि जिस वक्त में वो अपनी एक वाजिब नमाज को पूरी करता है उसके लिए इतना आसान हो जाएगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि एक जगह तो 50,000 साल लोग रुक के खड़े रहेंगे और जो मोमिन होगा उसके लिए 50,000 साल अल्लाह सुब्हान तआला एक नमाज के बराबर कर देगा। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमको खालिस मोमिन बनना है, मोमिन खालिस मोमिन, वो मोमिन जो जिसको अल्लाह कहे कि मोमिन है, वरना एक तरफ 50,000 साल हैं और ये नमाज होती कितनी मिनट की? 5 मिनट की होती है नमाज। 50,000 साल किधर और 5 मिनट किधर? उसके लिए हमें और आपको आपको मेहनत करना है, हमको खालिस मोमिन बनना है, वरना मुश्किल हो जाएगी। मोमिन वो जो कि जो सकलिन की हदीस को याद कर लें, मोमिनी कुरान और अहले बैत, कुरान हो दिल पे और अहले बैत की इत्तबा हो, तो ऐसे वो जाएगा, वो बनेगा मोमिन, और वो मोमिन का हिसाब एक 5 मिनट में हो जाएगा। देखें कयामत कितनी होलनाक जगह है, 50,000 साल आप सोचें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि नहीं, सरकार ने फरमाया नहीं, अगर मोमिन हुआ तो एक नमाज के बराबर टाइम, एक वाजिब नमाज के बराबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है कि उस दिन क्या होने वाला, योमा तकूनु समाउ कल मुहल व तकूनु जिबालु कल अहन वला यसअलु हमीमन हमीमा, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बिरंग धुनकी हुए ऊन की तरह हो जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा, आसमान पिघल जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे, धुनकी ऊन की तरह दिखने लगेंगे, और कोई दोस्त किसी सदीक हमीम को न पूछेगा, यानी कोई दोस्त किसी को नहीं पूछेगा। रिवायतों में है कि पहचानेंगे एक दूसरे को, लेकिन पूछेंगे नहीं, क्योंकि सब परेशान है अपने हाल से। रिवायतों में यह भी है कि मोमिन को वो काफिर दिखाए जाएंगे जो कि कुफ्र किया करते थे, और वो जब अजाब में मुब्तला होंगे तो मोमिन को दिखाए जाएंगे, देखो इनको हो रहा है अजाब, ताकि मोमिन को सुकून मिले। रिवायतों में ये भी है, मैं मीज़ान पढ़ रहा हूँ, कि कुफ्फारों को फरिश्ते दिखाए जाएंगे और कुफ्फारों को उनके सरदार भी दिखाए जाएंगे। अल्लाह ताला हर चीज सामने लेके आएगा। वला यसअलु हमीमन हमीमा यबसरूनहुम यवद्दुल मुजरिमू लौ यफ्तदी मिनल अज़ाब यौमइज़िन बिबनी वसाहिबती वअखी वफसीलती लती तुवी वमन फिल अर्द जमीआ थुम्मा युंजी। और कोई दोस्त किसी सदीक हमीम को न पूछेगा, उन्हें एक दूसरे को दिखाया जाएगा। मुजरिम ये पसंद करेगा कि इस दिन के अजाब से बचने के लिए फिदिये में वो दे दे अपनी औलाद को, अपनी बीबी को, और अपने भाई को, और अपने करीबी खानदान को जो उसके लिए जाए पना था, और रुए ज़मीन के तमाम लोगों को, फिर इस तरह वो निजात पा जाए। कल्ला इन्हा लवा, ऐसा हरगिज़ ना होगा, वो तो भड़कती हुई आग का शोला है। अल्लाह सुब्हान व तआला बता रहा है अज़ाब मोमिनीन के, ऐसा आग भड़क रही होगी, ऐसे शोले उठ रहे होंगे कि जब मुजरिम सामने लाए जाएंगे, अल्लाह उसे बचाए हमको, दुआ करें। तो उसका खौफ ना ज़्यादा होगा कि वो चाहेगा कि अपनी औलाद को फिदिया कर दे, वो औलाद जिसके लिए ज़िंदगी भर उसने मशक्क़त करी और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करी, और बीवी जिससे वो इतनी मोहब्बत करता था, और भाई जिससे उसकी उसके उसको ताकत थी, और जितनी भी चीज़ें करीबी रिश्तेदार जिनका सहारा था, और तमाम चीज़ दुनिया की जो है सब के सब दे दे, उस अजाब से पीछा छूट जाए मोमिनी। लेकिन उससे कहाँ छुटकारा है? कल्ला इन्हा लज़ा, अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है ऐसा हरगिज़ नहीं, वो तो भड़कती हुई आग का शोला है। नज़ात लिश्शवा तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, तो क्या है वो आग? अल्लाह ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं, वो तो भड़कती हुई आग का शोला है जो खाल को उधेड़ कर रख देगा, खाल को उधेड़ कर रख देगा। तो ये भी ले, तो जब ये आयत आई थी कि खाल को उधेड़ कर रख देगा, तो उससे मुराद ये भी है, मीज़ा ने लिखा है कि उससे आंखें बाहर आ जाएंगी और चेहरे जल के सिया फाम हो जाएंगे। तो किसको बुलाएगा वो? तत उमन अदबरा व तवल्ला, पुकार पुकार के अपनी तरफ बुलाएगा हर पीठ फेरने वाले रूगर्दान रूगर्दानी करने वाले से, जमा वो जमा वो आ तद उमन अदबर व तवल्ला व जमा व अव आ इन्नल इंसान खुलिक हनुआ इदा मस्सु शरु जजुआ व इदा मस्सल खैरु मनुआ। पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगा हर पीठ फेरने वाले रूगर्दानी करने वाले को, जिसने माल जमा किया और महफूज रखा। बेशक इंसान बेसब्रा खल्क हुआ है, जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो फरियादी बन जाता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो वो बखील बन जाता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस आग का बयान करा है जिसको देख के इंसान इतना खौफ करेगा कि चाहेगा कि सब चीज दे दे, हाँ सब चीज दे दे। और खालों को निकाल लेगी, किसको बुलाएगी अपनी तरफ, जो के अदबरा व तवल्ला, जिसने पीठ मोरी पीठ फेर ली अल्लाह सुब्हान व तआला से और रूगर्दानी करी, यानी कुफार। वो फिर कौन, जिसने माल जमा किया और महफूज रखा। ये माल का ऐसा है कि इसमें हक है मोमिनीन, हक इमाम है और हक सादात है, ये माल हक इमाम और हक सादात है, इसमें जो हक है उनको दें। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वह जमा अव आ, मतलब कि वो किसको बुलाएगी आग, जिसने माल जमा किया और महफूज रखा, कुछ दिया भी या नहीं। बेशक इंसान, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि बेसब्रा खल्क हुआ है, उसकी जो खिलकत है वो बेसब्री है, वो हरीस है, वो लालची है, हरीस वो लालची है, जब उस पर तकलीफ पहुंचती तो वो फरियादी बन जाता है, तकलीफ हुई कि बस फरियाद करना शुरू कर देता है, बेसब्रा हो जाता है कि अल्लाह मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, और जब खुशहाली नसीब होती है तो वो बखील बन जाता है, बुख्ल करता है। इसको मीज़ान ने अच्छा एक्सप्लेन करा कि जो ये इंसान में जो ये आदत है कि जब मुसीबत पड़ती है तो बेसब्रा हो जाता है, फरियादी हो जाता है, और जब खुशहाली आती है तो वो बखील बन जाता है। तो ये चीज़ें एक छोटे बच्चे में भी होती है, मतलब कि अगर आप उसके पास एक टॉय है और उसको खेल रहा है, आप उसे छीन लोगे तो चीखता है मुझे बस उसको चाहिए भी इसी तरह, या छोटा बच्चे को जो भूख लेती तो चीख मार के रोता माँ कि मुझे दूध चाहिए, और वो बेचैन हो जाता है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान ऐसा होता है। क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो मिजान ने कहा कि ये चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमारी खुशी के लिए ज़रूरी है, जो हम कुछ रखें और हम सिक्योर महसूस करें। तो जब मुसीबत पड़ती तो इंसान आती कि मैं अब मुझे मुसीबत है मैं, तो वो फरियादी बन जाता कि वो चाहता है सिक्योरिटी रहे उसकी लाइफ में, और जब माल आता तो उसको फिर उसके बाद उसमें बुखला जाता है। क्यों बुखलाता है? कि अब माल आ गया तो मेरी सिक्योरिटी के लिए अब मैं किसको क्यों दूँ, ये उसकी फितरत है, ताकि वो खुश रहे दुनिया में। लेकिन ये कैरेक्टर उसकी फितरत में है ज़रूर, अल्लाह ने डाला है, लेकिन उसके बाद अल्लाह चाहता है कि जब बालिग हो और जब ईमान उसका आए उसके दिल में, जब बड़ा हो बालिग हो तो उसमें समझ ये पैदा हो कि हाँ ये ठीक है, मेरी सिक्योरिटी ज़रूरत है, लेकिन मुझे अल्लाह का हुक्म मानना ज़रूरी है, मैं ईमान लाया हूँ, मुझे अल्लाह का हुक्म मानना ज़रूरी है, और मेरे माल में जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर कराया दूसरों का वो मुझे देना है। तो जब आदमी मोमिन बनता है तो वो इस अपनी फितरत को एक कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल के बाहर नहीं करता, उसको कंट्रोल में रखता है। फितरत सही है लेकिन उसको कंट्रोल में होना, एतदाल होना है उसमें। इस्लाम मज़हब बैलेंस मज़हब है, दरमियानी मज़हब है, आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी है। तो ये चीज, अब वो ये ही चीज है जो कि इंसान को मोमिन बनाती है कि वो माल की मोहब्बत रखते हुए दे, जो हिस्सा है हक़ इमाम है, हक़ सादात है, पूरा दे, खुम ज़कात, और अगर न देगा तो मुश्किल है। और ये जो माल की मोहब्बत है मोमिनीन, ये माल की मोहब्बत की वजह से जो उसकी बीमारी इतनी बढ़ती है, तो करबला बन जाता है, लोग शिमर बन जाते हैं, हाँ, उम्र साथ बन जाते हैं, यही माल की मोहब्बत से। और यही जमाना, अभी आखिरी जमाना है, इमाम जमा का जमाना, अब जरूर कभी भी हो सकता है, यही माल की मोहब्बत हमको इमाम से दूर रख सकती है, हाँ, इमाम से दूर रख सकती है, क्योंकि इमाम जासिम सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया कि दुनिया के सारे गुनाह की जड़ जो है हुब्बे दुनिया और ईमान। तो हमको चाहिए कि हम इस वक्त, ये तो आखिरी वक्त है, मौला का जहूर कभी भी हो सकता है, हमको चाहिए कि इस माल की मोहब्बत से जंग करें और उसको उसको दें। इस वक्त जितने दुनिया, इतने शोदा हैं दुनिया भर में, वो इतना जुल्म के शिकार है मुसलमान, हमको चाहिए उनको डोनेशन करें। अभी तो कितनी डोनेशन की ज़रूरत है, डोनेट करें ताकि माल का जिहाद करें, ज़बान का जिहाद करें, जब मौला आए तो मौला के साथ जिहाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला अल-अमरु अला अल-क़ौमिल आलमीन।